शरणं पितरौ नृसिंह बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह मातस्य चागदनुदन्वति मञ्जतो नौ तस्य चागदमुदन्वति मञ्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधेर्यहाज इहाञ्जशेष्ट तप्तस्य तत्प्रतिविधेर्यहाञ्जशेष्ट स्तावद् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह तस्य चागदमुदन्वति मञ्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधीय इहाञ्जशेष्ट स्तावद् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां
तत्र
अंततो गत्वा वह प्रकृति के विषय वशीभूत हो जाता है। अतएव यद्यपि तथा कथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे भी ऐसा नहीं कर पाते। कृष्ण भगवद गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि संसार के असली दुख चार हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अर्थात जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग। विश्व के इतिहास में कभी कोई प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सका। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सका। अतएव तथाकथित वैज्ञानियों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा राजनीतिज्ञों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने के लिए विकट प्रचार करना चाहिए और उन्हें कृष्ण भावनामृत स्तर तक उठाना चाहिए। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है, वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। त्वद उपेक्षितानां, यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते हैं तो न तो हम भौतिक जगत में, न स्वर्गलोक में, नहीं अधोलोक में कभी भी सुखी बन सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानानंजन शमाकर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णकेशाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदारे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो आज हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं, प्रह्लाद द्वारा नृसिंह देव को शांत किया जाना। और आज का ये श्लोक जो है, मैं बता रहा है किस प्रकार से भगवान एक ही ऐसे आश्रय हैं जिनसे हमें स्थायी भाव की सुरक्षा मिल सकती है। भौतिक संसार में हर जीव जब आता है यही सोच कर आता है कि मैं भी भगवान की तरह ही कुछ करके दिखाऊं, इसलिए आया है। हर जीव इस संसार में किस लिए आया है? यही सोचकर कि मैं भगवान की तरह ही कुछ और करके दिखाऊं, मैं भगवान बन जाऊं। भगवान नहीं बना तो कम से कम भगवान जैसे बन जाऊं, यही विचार से आता है। और उसी के कारण कितनी भी कठिनाइयां उसके सामने हो, लेकिन वो छोड़ता नहीं। उसका दृढ़ निर्धार कि मैं भगवान बनना चाहता हूं, मैं भगवान के जैसे बनना चाहता हूं, मैं कंट्रोलर बनना चाहता हूं, ये प्रयास कभी छोड़ता नहीं। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्मणि सर्वशः। अहंकार विमूढ आत्मा करता हमें, अहंकार के कारण वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, जो भी संसार में हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। और ये जो वृत्ति है ये भगवान से कंपटीशन की वृत्ति है। लेकिन प्रह्लाद महाराज इस श्लोक में साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता। माता पिता अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते, परिवार वाले किसी सदस्य की रक्षा नहीं कर सकते, नाव डूबते हुए आदमी की रक्षा नहीं कर सकते। केवल एक ही व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण। और इसलिए बुद्धिमानी यही है कि हम भगवान का आश्रय लें। क्या अड़सर है इसमें? इतनी सीधी सी बात है कि हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि भाई इस संसार में हम जो चाहते वो कभी होता नहीं। कितने लोगों को ऐसा अनुभव है कि हमने कुछ चाहा, बहुत इवन भक्ति के मार्ग में भी कुछ चाहा और वो हो गया, ऐसे कितनी बार होता है, और नहीं हुआ ऐसे कितनी बार होता है। ज्यादा करके यही होगा कि हमने जो चाहा वो नहीं हुआ है कि? हमें एक बार डॉक्टरों के कॉन्फ्रेंस में गए थे, जहां पर वो इस संसार को कैसे फ्रेंडली बनाया जाए, डॉक्टर लोगों को कैसे फ्रेंडली, डॉक्टर लोगों से बहुत लोगों को डर रहता है, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए सोच रहे थे कि इंडिया में बहुत गड़बड़ चल रही है, पेशेंट को कुछ कोई वैल्यू नहीं देता, इसलिए हम लोग को कुछ फ्रेंडली हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए जहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक अच्छा रिश्ता हो। तो इसके उन्होंने कोई लोगों को चुन कर भैया आप लोग बताइए आप कैसे करते हो, तो हम भी गए थे इसमें। और उसमें शुरू में सारे डॉक्टरों को एक पूछा गया अपने बारे में वर्णन करने के लिए। उसमें प्रश्न ये था कि तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते थे और आज जो हो उसमें आप खुश हो गए नहीं। और 99% सारे लोगों ने यही कहा कि मैं फलाना बन जाता था लेकिन मैं इसमें आ गया। हाँ, कोई नहीं चाहता था कि मैं ये डॉक्टर बनूं लेकिन बन गए। और फिर आखिर में क्या कहा, लेकिन अभी हम लोग ने एडजस्टमेंट कर लिया है, अभी इसी में हम लोग खुश हैं। यही हमारा जीवन ऐसे ही चलता है कि हम कुछ सोचते हैं करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होता। अपना जो एक ओपिनियन होता है हम सोचते हैं कि ऐसे होना चाहिए, खास करके जब दूसरे कार्य करते हैं तो हमें अधिक लगता है कि हम उसको ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। श्री श्री राधा गिरिधर भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई। सब लोग भारतवर्ष को कैसे चलाना चाहिए मनमोहन सिंह को बताते हैं, बताते कि आप ट्रेन में देखो कहीं पर भी चार लोग इकट्ठा होंगे तो वो यही बात करेंगे कि कैसे इस देश को चलाना चाहिए। क्या वैल्यू है इसका? लेकिन इसमें से केवल एक ही बात स्पष्ट होती है कि हम भगवान को, भगवान की नकल करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे ही सोते सोते वो सारा संसार चलाते हैं। भगवान कोई अपने ऐसा बहुत प्रयास प्लानिंग वानिंग नहीं करते, वो खाली सोते हैं, सोचते हैं ऐसा चलना चाहिए वैसे ही चलता है। ये भगवान है। और जीव कैसा है, बहुत पढ़ाई करता है, प्लानिंग बनाता है, फिर भी कुछ नहीं होता जो वो चाहता है। हाँ, ये बहुत कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल एक चीज उसकी तरह नहीं होती। केवल ये दिखाने के लिए कंट्रोलर कौन है। जैसे बच्चे समंदर के किनारे जाते हैं, बहुत बड़ा ऐसा बंगला बनाते हैं, फोर्ट बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, कार उसके ऊपर से चलती है, फर्स्ट क्लास ऐसे बनाते हैं, और फिर वो माँ बाप को बुलाने, पापा आ जाओ देखो देखो कैसे हमने बनाया है, तब तक एक बड़ी सी वेव आती है, जूम खत्म हो जाता है, रोने लगता है बच्चा। बाप क्या बोलता है, अरे बच्चा ऐसे ही होता है। जबकि वो खुद वही कर रहा है जो बच्चा कर रहा है। लेकिन उसको ये एहसास नहीं है कि मैं भी इसी प्रकार के वालू से, मट्टी से बंगले बना रहा हूं, जो एक दिन काल की बड़ी लहर से सब खत्म हो जाएगा। ये सब हमारे अहंकार से है, अहंकार और बुरा आत्मा। अहंकार के कारण मिथ्या अहंकार, सही अहंकार अलग अलग है, लेकिन मिथ्या अहंकार कौन सा है? प्रभुपाद हमेशा फॉल्स ईगो। एक सही ईगो होता है, ट्रू ईगो एंड फॉल्स ईगो। तो मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार, ये क्या है कि मैं शरीर हूं, मैं भारतवासी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं डिवोटी हूं, जो भी है अलग अलग प्रकार से हम लोग सोचते हैं। कुत्ता हूं, बिल्ली हूं। लेकिन थोड़ा ज्ञान आने के बाद हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा मन थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो अपने माइंड की तरह मुझे अच्छा पसंद नहीं है, मुझे वह ऐसी बात पसंद नहीं है, क्यों? एक्चुअली आपका कोई उसके संबंध नहीं है, लेकिन मन को पसंद नहीं है। आज जो चीज पसंद है वो कल पसंद नहीं है। माइंड इंटेलिजेंस ऐसे आस्ते आस्ते व्यक्ति सोचने लगता है कि कम से कम मेरी अपनी शक्ति से मैं अपना अपना रक्षण कर लूंगा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा प्लानिंग। आप ज्यादा करके पिता और पुत्र की बात सुनेंगे तो ऐसे ही सुनेंगे कि पिता अपने बच्चे को कहा, देखो आई हैव डेवलप्ड फ्रॉम अ स्क्रैच। सब लोग आपने सुना होगा, ज्यादा से ज्यादा पिता लोग अपने पुत्र को यही बताते हैं। क्या बताते हैं? कि मैं शून्य से सब कुछ निर्माण किया, 99% बोलते कि नहीं? आप लोग ही बोलते हो, सब लोग बोलते हैं अहम भावना, मैंने कुछ किया। पुत्र बोला कितने बार सुनूंगा हाँ, मुझे कोई रुचि नहीं, मैं भी कुछ शून्य से निर्माण करना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन पुत्र को पिता हमेशा बोला, नहीं नहीं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुमको कुछ भी प्रॉब्लम मेरे पास आ, अहम भावना। असल में इस प्रकार की रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो परिवार वालों की रक्षा इतनी ही झूठी है जितनी वो एक उन्होंने बंगला बना दिया समंदर के किनारे, उसी प्रकार से जो परिवार है ये सब उसी प्रकार से झूठा है, किसी प्रकार से वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। फिर हम लोग सोचते हैं कि समाज मेरी रक्षा करेगा, लेकिन समाज भी रक्षा नहीं कर सकता। कोई लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारे तो भारत की जो ये स्थिति है बहुत नाजुक है, इसे यहाँ पैसे नहीं है इसलिए हम लोग अपनी रक्षा कर ही नहीं पाते, इसलिए हम अमेरिका चले जाएंगे, न्यूयॉर्क में जाएंगे। लेकिन जब वो 9 सितंबर को बहुत बड़ी घटना हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, वो प्लेन का बॉम्ब बनाकर उसमें घुसा दिया, पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई, 30,000 लोग मर गए। तभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा आर्टिकल आया था कि कोई सोच नहीं सकता था ऐसे हो सकता, कभी किसी ने सोचा नहीं। सब लोग सोच रहे थे न्यूयॉर्क यानी परफेक्ट सिटी, परफेक्ट, सब उसका जो कारोबार है इतना परफेक्ट है, वहां कोई खतरा नहीं है, आप खाली न्यूयॉर्क में पहुंच जाओ, एक छोटा सा जॉब करो, नाउ यू आर सेफ फॉर एवर। भ्रम, ऐसे भ्रम में वो रहते थे, खुश थे। लेकिन आज वही लोग डर रहे हैं कि कहीं अपने अंदर से कोई नया टेररिस्ट नहीं निकले, निकल रहे हैं। तो कोई भी समाज, कोई देश कभी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन ये समझने के लिए ज्ञान की जरूरत है कि भगवान केवल एकमात्र हमारा शरण का आश्रय है। हम जब शरणागति लेते हैं तो ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए, भगवान से लेनी चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज मां एकं शरणं, अहम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि। आप चिंता मत करो, मैं आपको सारे जो ये पाप कर्म है, जो क्रिया कार्य हो रहे हैं, उनसे मुक्ति दिलाता हूं। मां सोचा डरो मत। अगर ऐसा बोलने के बाद फिर भी हमें डर क्यों लगता है, ये प्रश्न भगवान ने तो बता दिया, मां सोचा डरो नहीं, मैं तुम्हें आश्रय दे दूंगा। फिर हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें इस आश्रय में विश्वास नहीं है। अगर हमारा विश्वास है तो हमें पूरी तरह से, जैसे एक बच्चा रहता है छोटा सा, वो अपने माता पिता में इतना विश्वास रखता है कि वो किसी से भी डरता नहीं, कहीं पर भी जाता है, किसी को भी चैलेंज करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा पिता पीछे है वो सबको खत्म कर देगा। हाँ, ये उसका विश्वास है, भले ही वो पिता जैसे भी वो खत्म नहीं कर पाया, लेकिन एक विश्वास से
वो किसे से डरता नहीं। उसी प्रकार से बच्चे की तरह इनोसेंट फेथ, ऐसा जो विश्वास है अगर भगवान में उत्पन्न होता है तो हमारे जीवन में विश्वास पैदा करना ये कोई आसान बात नहीं है। ये असल में सारे हमारे भक्ति के जीवन का एक नींव है। इसी विश्वास के आधार पर हमारा जो भक्ति का जो बंगला बनेगा, जो महल बनने वाला है, ये भक्ति लता जो यहाँ से उग कर गोलोक वृंदावन तक श्री भगवान से भगवान की जगह श्री कमलों में पहुंचने वाली है, उसका बीज ये हमारा विश्वास है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। भगवान की भक्ति करने से मैं सब कुछ कर रहा हूं, इस प्रकार का सुदृढ़ निश्चय जो है वो हमारा विश्वास है, ये हमारी श्रद्धा है। उसको मजबूत बनाने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महान आचार्य जिनका विश्वास पूर्ण है, वो भी क्या क्या चिल्लाते हैं, क्या गाते हैं, क्या मुझे श्रद्धा का एक बिंदु दे दिए। अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तब पांच, मेरे पास कुछ विश्वास नहीं, मैं तो कंगाल हूं, मेरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है, आई डोंट हैव एनी रिसोर्सेस, मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जिससे मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया, आपकी अगर कृपा हो जाएगी तो श्रद्धा का एक बिंदु मेरे हृदय में आ जाएगा और फिर मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। यह हमारा प्रोसेस है कि भक्ति का जो ये मार्ग है, हम गुरु के बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर उनके आश्रय से अपने विश्वास को जागृत करके और अधिक हर दिन मजबूत बना दिलाते हैं। ये हमारा प्रोसेस है और ऐसा अगर हम करते हैं तो भगवान पूर्ण आश्रय दे देते हैं। भगवान तैयार ही है, वो बोल रहे हैं आप आ जाइए मेरे पास, लेकिन हमारा विश्वास नहीं, हम जाना नहीं चाहते। हम भक्त बनने के बाद भी ये प्रयास करते हैं, पूर्ण ज्ञान होने के बाद भी हमारा यही प्रयास रहता है कि मैं अपने तरफ से कैसे सब कंट्रोल करूं। भगवान तो है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, है नहीं, बैंक बैलेंस, मेरे FDs, मेरे शेयर्स, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, ये जो है ये मेरा प्रोटेक्शन करेगा। इट्स नॉट पॉसिबल, कब एक क्षण में चला जाएगा पता नहीं है, कभी भी जा सकता। तो नॉलेज मिलने के बाद भी, ज्ञान मिलने के बाद भी अगर फिर भी हम यही चाहते हैं मैं भगवान की भक्ति करूंगा लेकिन फिर मैं कुछ कंट्रोल करना चाहता हूं, तो आप कर ही योगी बनोगे। कर्म अच्छा करो आपको फल अच्छा मिलेगा, फिर थोड़ा सा कंट्रोल भी आए, कर्मयोगी को कंट्रोल आ जाएगा भौतिक संसार, या फिर अपने आप को कंट्रोल करना चाहते तो हट योगी बन जाओ, पूर्ण कंट्रोल, सांस रोक सकता हूं, कोई भी चीज को हिला सकता हूं अपने मन से, दूसरों के मन को पढ़ सकता हूं, सिद्धि प्राप्त कर सकता हूं, ये हट योग। लेकिन भगवान का जो भक्त है इनमें कोई रुचि नहीं रखता, क्योंकि तो उसको मालूम है ये सारी चीजें सिद्धि विद्धि सब कुछ ये यहाँ के भौतिक संसार की चीजें हैं। यहाँ केवल एक ही भौतिक संसार में सुप्रीम व्यक्ति है, वो कौन है, काल है। काल के प्रभाव से कोई रुकता नहीं है, काल के प्रभाव से बड़े बड़े महात्मा भी ऐसे ही चल जाते हैं, बड़े बड़े योगी। इस वजह से राधानाथ स्वामी ने ग्रंथ लिखा है, किताब लिखी है जर्नी होम, बहुत सुंदर किताब अपने जीवन में। तो उन्होंने एक योगी के बारे में बताया है, बाल शिवा योगी, कि हिमालय में देवप्रयाग के आसपास रहता था और उनकी दोस्ती हो गई, कोई यंग था और बहुत उच्छृंखल था, योगी तो था लेकिन लोगों से भिक्षा मांगा तो भिक्षा में जो चॉकलेट की भिक्षा चॉकलेट खाना चाहता, बहुत ऐसे लगता था कि ये बहुत रेस्टलेस आदमी है। फिर भी राधा महाराज उसके साथ रहे और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मैं चलता हूँ, आप यहीं रहो, मैं आगे जाता हूँ। तो योगी ने कहा नहीं, आज के शाम के लिए रुक जाओ, आज मैं ऐसे कुछ दिखाऊंगा जिससे आपको एक जीवन भर के लिए सबक मिलेगा। कहा ठीक है, एक दिन और चले रहेंगे। तो उस शाम को उन्होंने हजारों व्यक्तियों को बुलाया था और फिर बिल्कुल नेकेड, केवल केवल कोपिन में बैठते थे हिमालय के योगी, यंग 19-20 साल के, उन्हें ध्यान करके अपनी मुट्ठी से, जो कि ऐसे बैठे थे लेकिन मुट्ठी से शिवलिंग निकाला सामने सबके। तो सब लोग पहले सोच रहे थे तो कोई उच्चृंखल व्यक्ति है, लेकिन सब लोग तालियां बजाने लगे, सब लोग उनको उनकी पूजा करना चाहते। फिर उसने थोड़ी देर में उस शिवलिंग को टेबल पर रख के फिर अपने हाथ बंद करके सारी विभूतियां उसके ऊपर गिराई। सब लोग और खुश हो गए, सब लोग चिल्लाकर उनके पास आने लगे, हमको आशीर्वाद दो, हम आपकी पूजा करें, आपको क्या चाहिए। तभी उस योगी ने बहुत सुंदर बात कही, रुक जाए, मैं एक साधारण व्यक्ति, मैं केवल अपने योग साधना के कारण ये भौतिक संसार के जो सूक्ष्म नियम है उनको जानता हूं, इन नियमों को जानने के कारण मैं ये सब चीजें कर सकता हूं, मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई है। लेकिन सिद्धियां प्राप्त होने में क्या, इस संसार के सूक्ष्म चीजों को जानना और कैसे चलता है ये जानना। अगर मेरे जैसा साधारण व्यक्ति ऐसी चीजें कर सकता है, भगवान बड़े बड़े विश्व निर्माण करते, ये तो छोटा सा शिवलिंग है उसकी पूजा की, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता था कि किसी योगी से या कोई से, किसी जादू टोना करने वाले तांत्रिक से, उससे प्रभावित मत हो जाइए, उनको गलती से भगवान मत समझिए। मेरे पास ये सिद्धियां है, आपको मैंने दिखाया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी तुच्छता इतनी है कि भगवान विश्व को निर्माण कर सकते हैं, हमें इतनी छोटी सी शिवलिंग को निर्माण कर सकते हैं, इसलिए भगवान को पूजा करो। तो महाराज लिखते कि बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए, हम लोग कैसे चमत्कार से बहुत प्रसन्न हो जाते, चमत्कार देखते हैं हम लोग को लगता है ये तो भगवान है, बड़ा महात्मा है, इसकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन वो योगी जबकि बाहर से दिखने में उच्चृंखल था, लेकिन वो क्या बोलता है कि भगवान बहुत महान है, वो विश्व बना सकता है। तो इसलिए ये जो कंट्रोलिंग मेंटालिटी है वो हमारे योगी होने के बाद भी रहती है, लेकिन ऐसे योगी ज्ञानी बनने के बाद बहुनाम जन्मानाम ज्ञानमानम होते, जो ज्ञानी है जिसको पूर्ण ज्ञान आ गया है, सही ज्ञान, वो क्या करता है, वासुदेवम सर्वमिति समाहर्मासु, वो भगवान को वासुदेव को शरण जाता है। और शरणागति के लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना है, भगवान तैयारी है कि कब मेरे पास लोग आ जाएंगे, He's waiting। भगवान असल में देख रहे हैं कि ये लोग यहां वहां क्यों देख रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं देख रहे हैं, परमात्मा के रूप में वो हमेशा देख रहे हैं कब मेरे पास देखेगा, He's waiting। आप कोई सुअर बन जाओ, नाग बन जाओ, या कोई पंछी बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, हर योनि में वो आपके साथ जाते हैं देखने के लिए कब मेरे पास देखेगा, He's waiting। लेकिन हम इतने बुद्धू है कि हम उसके पास नहीं देखते, हम यही सोचते हैं I will use my intelligence and make this world perfect। यही सोचता है ना, क्या सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि को चलाऊंगा और इस संसार के वैकुंठ बना दूंगा, सोचता है ऐसे। लेकिन प्रयास करने के बाद उसको पता चलता है, अगर उसकी बुद्धि सही है तो पता चल जाता है कि नहीं मेरे बस की बात नहीं हम अभी इस मंदिर में कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं कि एक मंदिर बनाए, लेकिन अभी सब लोग ने हाथ उठा दिया, नहीं अभी हमसे कुछ नहीं होगा हम सब लोग नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, जगजीवन दास कुछ नहीं कर सकता, सूरदास कुछ नहीं कर सकता, करना है तो आपको ही करना, बस हम खाली प्रयास करेंगे, तब कहीं जाके बात बन रही है क्यों, ही इज द कंट्रोलर, वो देख रहे हैं कि कब मेरा आश्रय लेते हैं, अपनी ताकत से हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके आश्रय लेने के लिए हमें बुद्धिमानी चाहिए, देखना चाहिए उनको उन्होंने कैसे आश्रय दिया। द्रौपदी भी यही सोच रही है कि मेरे 5 पति हैं, पांडव सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, ज्ञान में सर्वत्र सबसे ज्यादा निपुण युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल सहदेव पांच पति और सारे जो पृथ्वी का जो साम्राज्य है उसके अधिपति, ऐसे लोगों में मुझे क्या डर है। लेकिन कुरु सभा में जब उनको बुलाया गया और दुशासन नीच दुशासन उनके वस्त्र खींचना चाहते, आप समझ लीजिए कि ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे में ये प्रसंग जो है बहुत खतरनाक है। ये वैष्णव अपराध का सबसे बड़ा भयंकर ऐसा वर्णन कोई होगा तो ये द्रौपदी वस्त्रहरण का वर्णन, कि वैष्णवों का कितना अपराध हो सकता है। लेकिन भगवान इस लीला में से क्या दिखाना चाहते हैं कि द्रौपदी जो कि राजकुल की बहू है, ऐसे नहीं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उसके पांच पति है जो बहुत मतलब संसार में उनके जैसे कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, उनकी शक्ति की कोई मर्यादा नहीं है, सोच रहे मेरे रक्षण करेंगे, दुशासन उनको खींच रहा है। जब वो पतियों को देखते हैं तो पति सर झुका देते हैं, फिर भीष्म को देखते हैं, वो कहते हैं मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, मैं ज्ञान अभी मेरा कलुषित है, मैं समझ में मुझे मैं ब्रह्म हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा योग्य क्या है अयोग्य क्या है। फिर धृतराष्ट्र को पूछ रही है, द्रोण को पूछ रही है, आखिर में कर्ण को भी पूछती है। लेकिन सब लोग केवल चुप रहते हैं। कर्ण तो उनका बहुत बड़ा अपमान करता है। जब उनको पता चलता है कि 10,000 हाथियों का बल वाला है दुशासन मेरे सारे खींच रहा है और मेरे पति मेरे बुजुर्ग कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो अपने खुद की ताकत से उन्होंने प्रयास किया, वो खुद प्रयास करे। लेकिन दुशासन के सामने उनकी क्या ताकत, या बोला नारी थी, तब उन्होंने छोड़ दिया हाथ और क्या किया, भगवान का नाम लिया, हाथ उठाकर हे गोविंद हे कृष्ण, और तुरंत ही उसी क्षण भगवान साड़ी के रूप में अवतरित होकर फिर हम आगे की कथा जानते हैं। लेकिन इस कारण भगवान के इस प्रकार से शरणागति लेने के कारण भगवान ने क्या किया वो देखना चाहिए। भगवान ने तभी एक शपथ ले ली कि जितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने ये चीज देखी है, जिन्होंने ये चीज करने के लिए कारण हुए हैं, ये सारों का नाश हो गया। भीष्म तो बहुत बड़े भक्त है, महाजन है, उनका भी नाश जरूरी है। असल में द्रौपदी के इस अपराध के कारण भगवान चाहते थे कि पांडवों को भी मारा जाए, ये उनकी इच्छा। एक आचार्य कहते हैं कि पांडव इसलिए बच गए क्योंकि वो द्रौपदी को प्रिय थे, इसलिए बच गए, नहीं तो द्रौपदी का अपमान जिन्होंने देखा सुना कहा कारण हुए सारे खत्म हो गए, कोई बचा नहीं, उसी के लिए युद्ध बना। तो भगवान जब शरणागति देते हैं किसी को तो केवल शरणागति नहीं देते, उसकी पूरी तरह से जैसे अपना पुत्र बालक उसकी जैसे किसी पिता को जैसे क्रोध आएगा, जैसे यहां पर हम देखेंगे नरसिंहदेव, उनको इतना क्रोध है कि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी वो शांत नहीं हुए, वो चिल्ला रहे और देख रहे हैं यहां कोई है कि नहीं, इतना उनको क्रोध है। उसी प्रकार का क्रोध भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया जब द्रौपदी का वस्त्र। तो इसलिए भगवान का आश्रय देना यही हमारी योजना है, क्योंकि उनके आश्रय से ना तो हमारी रक्षा होती है, लेकिन भगवान अपने आप को तुरंत अपने आप को देना चाहते हैं। केवल हमारा आश्रय यही है तुम्हारी बात नहीं है, भगवान का प्रेम भी हम चाहते हैं। लेकिन भगवान कंडीशन बनाते हैं कि नहीं, सर्वधर्मान परित्यज महामेकं, आप सबको छोड़ो, भीम को छोड़ो अर्जुन को छोड़ो, मेरे शरण में जाओ, सारा धर्म है उसको छोड़ दो मेरे शरण में आ जाओ। लेकिन भगवान इतने आतुर हो जाते हैं कभी कभी कि नहीं 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 ये भी बराबर है, इससे थोड़ा मुझे आगे जाना चाहिए। जब वो सोचते कि इससे भी अधिक कुछ करना चाहिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी उनका वर्णन करते नमो महावदन्याय। महावदन्याय क्यों बताया गया, सारे जो भगवान के अवतार है वो तो उसी प्रकार से सक्षम है दूसरों को आश्रय देने के लिए, लेकिन इस अवतार को महावदन्याय क्यों बताया, इतना अवतारी, इतने सारे जो अवतार हुए हैं उनमें इनमें क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि राम भी कहते थे कि विभीषण मेरे शरण में आया इसलिए मैं शरण दूंगा, रावण भी आएगा तो भी मैं उसको शरण दूंगा, लेकिन उसको पहले आना पड़ेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, वो कहते किसी को आने की जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगा। और केवल ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है कि जो भक्त है भगवान की भक्ति है उनके लिए नहीं, इनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। कैसे, एक बार जब वो प्रयाग से वापस आ गए और भक्ति का जो अनोखा ऐसा रूप उन्होंने दिखाना शुरू किया, उसके बाद में कृष्ण के अलावा उनको कोई बात समझ में नहीं आती थी। अगर वो व्याकरण पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को तो व्याकरण में भी कृष्ण कृष्ण ही बोल रहे हैं। और ये सारे जो बच्चे हैं वो भी सोच रहे क्या होगा मेरे हमारे टीचर को क्या होगा, ऐसे कैसे हो, पहले तो अच्छे से पढ़ा देते। तो कभी कभी तो टीचर ऐसे बैठे रहते थे, कुछ सोच में रहते, बच्चे आते थे बैठे हैं, बच्चों को देखते भी नहीं थे, बोले आज की शाला खत्म हो गई, जाओ घर पे जाओ, बच्चे भी चले जाते थे। एक बार उन्होंने देखा ब्राह्मणों के लड़कों ने कि ये तो पंडित कुछ बड़बड़ा रहा है, क्या बड़बड़ा देखते हैं तो सही, तो बोलने लगे गोपी गोपी गोपी, रो रहे। तो ब्राह्मणों को लगने ऐसे तो कहीं पर शास्त्र आधार नहीं कि गोपियों के नाम को रटना चाहिए, भगवान को नाम को रटो। तभी उनके जो विचार थे उनकी जो भावना थी उसके अंदर वो इतने मशगूल थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कि वो क्या बोल पड़े, ये कृष्ण कृष्ण क्या कर रहे हो, तुम काला है गंदा है, वो कितना निर्दयी है, उसने वृंदावन से जाते समय सबको कहा मैं आऊंगा लेकिन कभी आए नहीं, ऐसे कृष्ण को मुझे मुंह भी नहीं देखना है, उसका नाम की क्या बात कर रहे हो, बहुत गालियां दे कृष्ण। तो तभी ये जो बच्चे थे उन्होंने और कुछ कह दिया, बोला कृष्ण का नाम लोगे तो आप पिटाए पिटे पिटो पिटे जाओगे, और एक लाठी लेकर बच्चों के पीछे भागने लगे मारने के लिए। ये सारे ब्राह्मण लोग भाग गए और दूसरी पाठशाला में जाके कहने लगे निमाई पंडित पागल हो गया है, वो आज हमें मारना चाहता था क्योंकि हमने उसको करेक्ट किया कि गोपियों का नाम मतलब भगवान का नाम बोल, वो क्या शास्त्रों को बदलना चाहता है, क्या समझता है अपने आप को, इसलिए आज के बाद अगर किसने फिर से ऐसी लिटाई की तो हम उसको पीटेंगे सब मिलकर। और ये बात निमाय पंडित को पता चली, तभी उन्होंने क्या निर्णय लिया, इसका मतलब है कि ऐसे लोग भी जो है जो मुझे समझने वाले नहीं है ये मेरा अपराध करेंगे, इसलिए उनको बचाने के लिए मुझे अब संन्यास लेना होगा। और संन्यास उस समय लिया जब उनकी नवविवाहिता पर पत्नी 14-16 साल की, सारे भक्त इतने प्रिय उनके साथ ऐसे जीवन जा रहा था पता नहीं चल रहा था कैसे जीवन जा रहा है, आनंद का केवल आनंद कांड, लेकिन ऐसे समय वो सोच रहे हैं कि ये सब को छोड़ देना चाहिए, किसलिए, ये सारे सच्ची माता विष्णु प्रिया अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित इनको क्यों छोड़ना चाहिए, जो मेरा अपराध करते हैं उनको कृष्ण प्रेम देने के लिए भी कोई सोच सकता है, इसलिए उनको नमो महावदन्याय कहा गया है। इनका अवतार कैसा है ना आज तक किसी ने सुना ना सोचा, ऐसे भगवान की कृपा बांटने के लिए, और केवल भगवान के बारे में ज्ञान देना इतना नहीं, उसमें भी कोई सीमा नहीं है, क्या देना चाहते हो, गोलोक का प्रेम देना चाहते हैं, कोई साधारण ऐसे चलो भक्त बन गए ऐसे नहीं, गोलोक का प्रेम देना हरिनाम संकीर्तन, गोलोक का जो प्रेम धन है वो हरिनाम के माध्यम से वो सबको बांटना चाहते हैं, चांडाल को भी बांटना चाहते हैं, अपराधी को भी बांटना चाहते हैं, और उनसे भी चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक उनके ही एक्सपेंशन बलराम नित्यानंद प्रभु ये अधिक आश्रय लाता है। उनका गुण क्या है, उनका गुण का वर्णन क्या है, मार के प्रेम दे। ऐसे कभी सुना है कोई आपको चाटा मार रहा है और आप उसको प्रेम दे रहे हैं? इम्पॉसिबल। लेकिन नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, उनको जगाई बजाए मार रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मुझे मारो लेकिन भगवान का मारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये उनका होगा। तो इसलिए ये दोनों निमाय निता है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये ऐसे अवतार है जो नमो महावंदना है। और उनकी आश्रय कर प्राप्त करने से फिर हमें इस प्रकार से उपेक्षित नहीं होना पड़ेगा, अन्यथा भगवान से हम उपेक्षित रहेंगे। भगवान की उपेक्षा मतलब क्या है, भगवान के बारे में जानना ही नहीं। हम इस संसार से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान की तरफ देखने के बारे में समझ नहीं है, ऐसी हमारी स्थिति हो जाएगी। अगर भगवान ने जो दी हुई वाणी है उसको हम सुनेंगे नहीं, उसको हम दूसरों को कहेंगे नहीं, ये गीता का जैसे हमारा ये मैराथन मंथ है, हम गीता को बांटेंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। बहुत लोग कहते हैं ऐसे नहीं, ठीक है जब उनका समय हो जाएगा तभी वो मंदिर में आ जाएंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु का भाव नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का भाव नहीं। वो क्या कहते हैं, जाओ लेके आओ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर इनको क्या आज्ञा दी, घर घर जाओ सबको भगवान का नाम लेने को। आज उसी आदेश से श्री प्रभुपाद ने हमें कहा है, प्रभुपाद अपनी ताकत पे नहीं बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, मेरे गुरु की ताकत पे मैं आपको बोल रहा हूं, ये करो, भगवद गीता का वितरण करो, दूसरों को प्रचार करो, मेरी शक्ति से नहीं, मेरे गुरु की शक्ति से। और जिसने आश्रय ग्रहण किया है और जिसने कुछ करके दिखाया है, ऐसे भक्ति की एक निशानी है। जैसे प्रभुपाद ने जलदूत में उन्होंने कविता लिखी, क्या लिखी कि मैं कैसे हूं, एक पपेट की तरह, आई एम लाइक ए पपेट, आप मुझे नचाइए जैसा चाहे वैसे नचाइए, मैं नाचने के लिए तैयार हूं। ये पपेट की जो भावना है हमारे हृदय में जब बराबर से आ जाएगी तब हम आश्रय प्राप्त करते हैं। असल में इसी में समझदारी है, क्योंकि पूरी तरह से हम अगर एनालिसिस करेंगे संसार का तो पता चलेगा कि नहीं, इस संसार में हमारी मर्जी से कुछ नहीं होना, क्यों ना हम भगवान का पपेट बन जाए, कितनी अच्छी बात है। तो एक एक पपेट बन गए श्रील प्रभुपाद, तो आज क्या हो रहा है संसार भर में, लोग भक्त बन रहे हैं, बहुत सारे लोग मंदिर बना रहे हैं, पाश्चात्य देशों में बना रहे हैं, भारत में कितनी जगह पर भक्ति का जो प्रचार हो रहा है बहुत जोर से हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति ने बोला मैं पपेट बनना चाहता हूं। इसलिए यही नहीं कि अपने जीवन का हम उद्धार कर सकते, लेकिन दूसरों का भी उद्धार हो जाएगा केवल अगर हमारे हृदय में ये पपेट की भावना हो जाए, आई एम अ पपेट। और उसके लिए बहुत हमारे पास सबूत है कि हम पपेट क्यों हैं। आप मानो या ना मानो, जब पपेट हो ही तो पहले मानने के लिए क्या गड़बड़, आप नहीं मानेंगे तो भी आप पपेट नहीं हो क्या। प्रकृति क्रिया माना, प्रकृति सब कुछ कर रही है आपके माध्यम से, तो आपको प्रकृति का पपेट बनना है या कृष्ण का पपेट बनना है, ये आपको डिसाइड करना है, ये हमको सबको डिसाइड करना है। और इस प्रकार का पपेट बनने के लिए हमें गुरु का आश्रय चाहिए, क्योंकि वो बनाएंगे हमें पपेट, वो सिखाएंगे कैसे पपेट बनाना है, क्योंकि वो स्वयं इस प्रकार का कठपुतली भगवान के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। यही हमारा भक्ति का मान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। किसी को कोई प्रश्न
ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्री प्रभुपाद की।